रेडियो जिंदगी 1550 एम या फिर 99.7 एफएम HD3 पे गुड इवनिंग लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। 3:35 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में एंड यस इट इज टाइम फॉर AW लॉ शो ब्रॉट टू यू बाय AW लॉ ग्रुप। आपके पास में अगर कोई भी सवाल है, आप अगर परेशान हैं किसी डेट को लेके या फिर किसी इमिग्रेशन के मैटर को लेके, तो आप बात कर सकते हैं स्टूडियो में। वी हैव अटर्नी इखलास एंड वी हैव अटर्नी आसमा हियर इन द स्टूडियो। आप फोन कर सकते हैं 510-770-1550, दैट्स 510-770-1550 पर, या फिर आप उनके ऑफिस नंबर पे फोन करें 510-936-8211, 510-936-8211। उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com, awlawgroup.com। 4 तक हमारे साथ में दोनों अटर्नी जो हैं वो ऑन एयर हैं, तो आप फोन करके उनसे बात कर सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्पीक टू देम। हेलो अटर्नीज, बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू, वेलकम टू द शो।
थैंक यू। आज हम स्टेट प्लानिंग पे भी थोड़ी बात करेंगे।
जी जी,
वो हमने शुरू में कवर किया था, लेकिन आज होपफुली जरा थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे। तो किसी कॉलर्स हैं जिनको क्वेश्चन है स्टेट प्लानिंग,
सो ऑल राइट, सो डेफिनेटली सो लिसनर्स अटर्नी क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट एस्टेट प्लानिंग। तो अगर आप उस बारे में कुछ पूछना चाहें तो भी जरूर फोन कर सकते हैं 510-770-1550। एंड देन इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे अटर्नी आसमा, कि SSI क्या है, सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स के से रिलेटेड सवाल हैं वो। एंड देन शी विल ऑल्सो टॉक समथिंग अबाउट द ग्रीन कार्ड एंड परमानेंट रेजिडेंसी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अटर्नी क्लास क्या है आपके पास में?
आज अस्मा पहले जाएंगी।
ऑलराइट, लेट्स डू दैट।
इमिग्रेशन एंड SSI,
ठीक है, लेट्स डू दैट। अटर्नी अस्मा से बात करते हैं, फिर हम एक अच्छा सा गाना सुनेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट एस्टेट प्लानिंग। ऑलराइट, तो अटर्नी आसमा आप मुझे बताइए, आई बिलीव दैट यू हैव सम थिंग्स दैट यू वांट टू कवर अबाउट ग्रीन कार्ड एंड परमानेंट रेजिडेंस, सो व्हाट डू यू वांट टू शेयर?
सो एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम इधर शो कर रहे थे, उसके बाद से हमारे ऑफिस में बहुत से क्लाइंट्स कॉल कर रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं, मेरी आवाज?
जी 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 जी।
तो वो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पास ग्रीन कार्ड है, हम 2 से अमेरिका में वापस नहीं आए, तो क्या हमारा ग्रीन कार्ड वैलिड है या नहीं? तो मैंने सोचा आज हम उसके बारे में बात करते हैं।
ऑलराइट, वी कुड डू दैट।
कि जब आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप बाहर जाएं तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें एक तो ये है कि देखें, जब आप ग्रीन कार्ड पे हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको 1 से ज्यादा अरसा यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर नहीं गुजारना चाहिए।
ओके।
बिकॉज फिर वो आपके इंटेंशन को क्वेश्चन करते हैं कि वे डू यू वांट टू लिव, इफ यू डू नॉट वांट टू लिव इन US एंड व्हाई आर यू
कैरिंग अ ग्रीन कार्ड, व्हाई डू यू हैव वन?
यस, सो एंड इफ यू डू वांट टू लिव, व्हाई आर यू कमिंग बैक आफ्टर अ ईयर? इतना अरसा जहां पे आप रहना चाहते हैं आप वहां पे 1 से ज्यादा अरसा बाहर नहीं रहते, तो टेक्निकली स्पीकिंग लीगली भी आपको 1 से ज्यादा अरसा बाहर नहीं रहना चाहिए। मेक श्योर कि आप 1 में एक दफा एटलीस्ट एक एंट्री तो US की लगा दें ताकि आपको आपकी ग्रीन कार्ड पे कोई इफेक्ट ना हो।
तो जो आप बोल रहे हैं एक एंट्री US का लगा लें, वो अप्रोक्सीमेटली मतलब सजेस्टेड कितना है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उसका?
इट कुड बी फॉर अ वीक, इट कुड बी 3 3 डेज, लेकिन मेक श्योर कि आपका साल में एक ट्रिप जरूर लग जाए।
एक ट्रिप लग जाए, ऑल राइट। और आप बोल रहे हैं कि 1 तक बंदा टाइम स्पेंड कर सकता है बाहर US से ऑन अ ग्रीन कार्ड, ऑल राइट, विदाउट बीइंग क्वेश्चन्ड। तो मतलब अगर जब वो वापस आते हैं, सपोज करें कि आप 2 के बाद में आते हैं, 1 से ज्यादा टाइम स्पेंड करके वापस आते हैं, तो इमिग्रेशन पे ज्यादा सवाल पूछते हैं उनसे?
हाँ, फिर पोर्ट ऑफ एंट्री वाले पूछेंगे कि आप 2 तक क्यों बाहर रहे हो, आपने अगर आपने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बन के रहना है तो आपने इतना अरसा टाइम क्यों गुजारा? तो अगर आपने 2 का अरसा गुजारा है तो मेक श्योर कि आपकी कुछ चीजों का ख्याल रखिए। एक तो ये आप रखिए ख्याल कि आपका कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, एड्रेस स्टिल वैलिड होना चाहिए, आप टैक्सेस फाइल कर रहे हैं ताकि आप उनको बता सकें कि मेरा इंटेंशन जो है वो टोटली अपनी परमानेंट रेजिडेंस को अबेंडन करने का नहीं है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो सबसे सेफ तरीका है वो ये है कि आप री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करें। तो उसमें आप भले 2 के अंदर एक भी ट्रिप US को ना लगाएं, आपका ग्रीन कार्ड जो है वो स्टिल वैलिड रहेगा।
ओके।
सो सबसे सेफ तरीका मैं सजेस्ट करूंगी कि आप री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मेक श्योर कि आपकी कुछ चीजें ऐसी जैसे आप टैक्सेस फाइल कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर है, आपका एड्रेस है यहाँ पर, कि अगर वो आपको चैलेंज करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वो आपका कैंसिल नहीं कर सकते अगर आपका ग्रीन कार्ड स्टिल वैलिड, इफ इट्स स्टिल वैलिड दे कैन नॉट कैंसिल इट, बट दे विल गिव यू हार्ड टाइम व्हाइल री एंटरिंग बैक टू द US।
ऑल राइट, सो लिसनर्स, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और प्लान करके 2 से ज्यादा के लिए वापस जाते हैं इंडिया या फिर पाकिस्तान या जहां भी आप जाना चाहते हैं, If you plan to spend over a year in that country, not in the US, then, well, Attorney Asma ने आपको तरीके बताए हैं to keep your green card safe and cancel नहीं कराने से. लेकिन अब मुझे बताइए Attorney Asma, अगर किसी की तबियत ही खराब हो on medical grounds और वो US नहीं आ सकते अपने green card के लिए entry file करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
Well, you know what, उसमें ये है कि आप देखिए कितना अरसा आपने गुजारा है. सबसे पहली चीज जो आपको जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है कि आपका green card वैलिड होना चाहिए. लेट्स से कि आपने मेडिकल ग्राउंड्स पे तीन साल गुजारे हैं, चार साल गुजारे हैं, आप इंडिया चलेंगे, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आपने ट्रैवल नहीं करना, तो आप दो तीन साल आपके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, आप वापस आने के काबिल नहीं हैं. तो आप आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स कंपाइल हो, आपके पास उनका रिकॉर्ड हो, कि अगर वो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री वाले पूछें कि इतना टाइम क्यों गुजारा, तो आप उनको दिखा सकें कि मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकता. तो उसमें चांसेस हैं 60-70% के वो आपको अंदर आने देते हैं. अगेन यू नो व्हाट, वी कैन नॉट से एनीथिंग विद गारंटी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको वेवर मिल सकती है.
ओके, सो लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इमिग्रेशन, अटॉर्नी आसमा इज द इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, वो फिलहाल हैं स्टूडियो में, आप उनसे बात कीजिए ऑन 510-770-1550. दैट्स 510-770-1550. अदरवाइज आप उनसे बात कर सकते हैं उनके ऑफिस नंबर पर भी, 510-936-8211. दैट्स 510-936-8211. उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com. सो मूविंग ऑन अटॉर्नी आसमा, हम मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या उससे पहले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप SSI पे थोड़ा और कवर करना चाहें तो.
हाँ जरूर. तो SSI जो है बेसिकली दीज आर सप्लीमेंटल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, दीज आर डिफरेंट देन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. और उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र या तो 65 ईयर्स होनी चाहिए या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते. अब हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें डिसेबिलिटी है बट इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग डिसेबिलिटी, आर वी स्टिल एलिजिबल फॉर SSI और नॉट. तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो, जैसे आप कैंसर के पेशेंट हैं या फिर आपको हार्ट डिजीज है. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट एबल टू वर्क फॉर 12 मंथ्स, द डिसेबिलिटी इज गोइंग टू लास्ट फॉर 12 months, you can be eligible.
So,
इस सूरत हाल में मैं कहूंगी कि आप हमारे ऑफिस कॉल करें, हम आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे SSI benefits के.
All right. Attorney Asma, there are people who are waiting to speak to you, उन्हें भी आपकी गाइडेंस की जरूरत है, तो देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विद Attorney Asma.
Yeah, hi Attorney Asma, thank you for taking my call. Hello.
जी, I can hear you, please go ahead.
Yeah. So hello? I have a question for Attorney Asma. Thank you so much for taking my call, Attorney. My question is about my mother's green card. She got the green card. She came here in US in 2012.
Okay.
And after about 3 months, she went back.
Okay.
But she never traveled back after that. She fell really sick. She had a heart attack when she went back. Mm-hmm. And after that, one after the other, she was having some medical problems, and then she didn't want to come here. So what is her status? How do I know what is her status right now? And if I want to bring her back, then is there a way that we can, you know, do some paperwork before she comes here, so, you know, she's not in trouble when she reaches here at the airport?
Okay, aapka naam kya hai?
Neetu Kalra, and I'm calling from Fremont.
ओके नीतू, तो आपने अपनी मदर की पिटीशन फाइल की थी क्या? आपने की थी? ओके, तो फिर आई एज्यूम कि आप सिटीजन हैं. एक इसका तरीका तो ये है कि देखिए, आपकी आपकी मदर को 5 साल से ज्यादा अर्सा हो गया यूएस से बाहर, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजियर. आपको डॉक्टर से सारी मेडिकल रिपोर्ट लेके कंपाइल करनी पड़ेगी, एक फाइल बनाकर रखें. और फिर दूसरा ये है कि वो जब यहाँ पे आए यूएस में, आप उनकी फ्लाइट जो है वो इंग्लैंड से लें यूएस की, ताकि इंग्लैंड में, क्योंकि वो फिर उनको जाने देंगे दिल्ली से, वो उनको शायद बोर्ड ना होने दें. तो इंग्लैंड से वो आए और फिर जब वो एयरपोर्ट ऑफ एंट्री पे हों, तो उनके पास सारे प्रूफ हों कि हम इस वजह से मैं 5 साल तक ट्रैवल नहीं कर सकी, बिकॉज आई वॉज अ हार्ट पेशेंट, द डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू स्टे ऑन द बेड. और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर ये भी नहीं होता तो फिर आप उनका दोबारा से ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दें.
ठीक है. सो ये लंदन से यूके से आने वाली बात मुझे समझ नहीं आई. सो आई शुड बाय अ टिकट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन
एंड देन फ्रॉम लंदन टू यूएस. यस.
ओके, सो आई शुड नॉट बाय वन ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू यूएस.
यस, बिकॉज वो वहां पे चेक कर लेंगे, वो देखेंगे कि 5 साल तक आपकी वालिदा नहीं गई तो वो नहीं आने देंगे. आई एम सॉरी नीतू, मैं आपकी कॉल को यहां पे कट कर रही हूं क्योंकि और कॉलर्स वेट कर रहे हैं.
But Neetu, you can speak to Asma, attorney Asma, in detail. Call her on the office number and she'll be able to discuss this further, okay? Thank you very much for calling in. Call attorney Asma on 510-936-8211. Hello, you're on air with attorney Asma.
Hi, Tony. Anyways, here I am. And I have a question for an employment-based green card.
Sure.
My employer has already filed 485s and I got a EAD.
Okay.
EAD.
Mm-hmm.
The green card EAD. So how long an individual can be out of jobs when the person has a EAD?
Mm-hmm. When was your I-485 filed? How long ago?
It was filed in March 2012.
March 2012, I-485?
Yes.
Okay. And so which category was it? Was it EB2, EB3?
EB2 India.
EB2 India. You know what? What's your name?
Hiran,
I'm not sure. I need to know more details about your case. 2012, it's 2017 now, so it's 5 years. I need to know more details. I won't be able to give you a specific advice right now, but if you call at my office, number 510-936-8211, I can give you a detailed response, but please, you have to provide me all the dates, all the important dates. When was the first EAD issued? How long you've not been working with the current employer?
Okay. Just wanted to know that the person, how long the person can be without job. That is,
you know what? The answer will depend. When was it filed? What category? When was your EAD issued? So I need to know all these details.
Okay. All right.
Mm-hmm. Okay.
Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much for calling in. Listeners, again, if you also have any questions for attorney Asma about immigration or SSI or green cards, you can call us on 510-770-1550. That's 510-770-1550. Hello, you're on air. Please go ahead.
Yes, can I speak with Asma, attorney Asma?
She's listening. Please go ahead.
Oh, my question. I am actually wanted to apply. I'm trying to get married, and I wanted to see whether I should do a fiancé visa or just do the citizenship visa. Wait, which is faster? Which way would be appropriate?
What's your name, sir?
My name is Shuja.
Shuja, thank you very much for calling to our show. So, where is your fiancé right now? Is she in the U.S. or is she abroad? Hello?
Shuja, can you hear us?
Yes.
Where is your fiancé right now? Is she in the U.S. or is she somewhere else?
She's somewhere else.
Okay, then you need to go ahead and proceed with the fiancé visa.
Oh, and then how long does it take?
It could take anywhere between 5 to 7 months.
Oh, okay. So that would be better to do it that way, and then we can, you know, get married here.
Yeah, once she arrives here, then you have to get married within 90 days.
Just out of curiosity, do you know how long does it take if you were to apply as a citizen?
Well, as a
get married abroad?
Well, so you cannot apply for her citizenship straight away. You have to apply for her I-130 petition first. So you will be applying for her immigrant visa. And then once the immigrant visa is approved, then she will come to the U.S. as a green card holder. And then after 3 years, you can apply for her citizenship. That could take anywhere from 8 months to 15 months.
Oh, okay. That's not that long either. All right. Appreciate your time. Thank you.
Thank you
very much for calling in. Let's take a small little break here, and after the break, let's come back and continue talking about this. Or we also have to talk to attorney Ikhlas about estate planning. So listeners, coming up is a number. Coming up, we are listening to a song. And any songs, any questions that you have, keep them ready. We'll be right back. Jai Jai.
Big, 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 big
वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी. मैं हूं आपके साथ में ईरा. शो चल रहा है यहाँ AW लॉ शो, ब्रॉट टू यू बाय AW लॉ ग्रुप. हमने बात की टर्नी आसमान से इमिग्रेशन के बारे में. तो अगर आपको इमिग्रेशन को लेके, एस्टेट प्लानिंग को लेके या फिर डेथ सेटलमेंट को लेके कोई भी सवाल होते हैं, दे आर द स्पेशलिस्ट. फिलहाल स्टूडियो का नंबर है 5107701550. इस नंबर पे अब हम बात करने वाले हैं अटर्नी इखलास से एस्टेट प्लानिंग के बारे में. तो अगर आपके पास कोई सवाल है आप फोन कीजिए ऑन 5107701550 या फिर आप उनके ऑफिस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं ऑन 5109368211. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, अटर्नी इखलास वेलकम टू द शो.
शुक्रिया या.
तो मैं समझती हूँ आपके उस एस्टेट प्लानिंग को लेके काफी सारा मैटर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं.
क्योंकि जब लोग हमारे पास आते हैं क्लाइंट, तो उनके पास सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, भाई हमें एस्टेट प्लानिंग की क्या जरूरत है. एक तो पहले कहते हैं मेरे पास स्टेट है नहीं, यानी हम तो गरीब लोग हैं. तो एक तो पहले मिस नोमर है कि स्टेट जो है वो यानी इसका मतलब नहीं कि बड़े महल आपके पास हो या सोने के खजाने हो. आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी टेंजिबल हो उसको स्टेट कहते हैं. वैसे स्टेट लीगल टर्म है जिसको इसका मतलब आपकी जो भी एसेट्स हैं उसको स्टेट कहते हैं. तो क्यों जरूरत है लोगों की, और हम सबको ये जरूरत है, और काफी इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन जाहिर बात है हम इतना सोचते नहीं कि डेथ के बाद क्या होगा. हमारे जो
पीछे रह जाएंगे
उनको क्या क्या मुसीबतें होंगी. वी डोंट थिंक अबाउट इट, बट एक्चुअली इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट थिंग एंड एवरीबडी शुड हैव. जब भी आप किसी का इंतकाल होता है, when somebody dies, ये है कि उसके जो एसेट्स हैं ना सारे फ्रीज हो जाते हैं.
ओके.
देन द ओनली वे टू गेट दम आउट, अगर उन्होंने कोई वेल या स्टेट प्लान नहीं छोड़ा पीछे, द ओनली वे टू गेट दम आउट इज टू गो टू कोर्ट एंड डू व्हाट्स कॉल्ड ए प्रोबेट प्रोसेस. प्रोबेट प्रोसेस में यही है ना कि बेसिकली कि आप जाके जज को बोलेंगे, भाई ये साहब इनका इंतकाल हो गया, ये डेथ हो गई है इनकी, और इनके जो एसेट्स हैं अब वो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, आई शुड गेट दम, आई एम द हेयर. सही बात है, वो कोर्ट तो नहीं कहेगा कि भैया ले लीजिए जाइए. तो बेसिकली उसमें काफी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक आध साल लग जाता है आपको और सारी प्रॉपर्टी निकालते हैं. उसका 5-7% तो आप समझ लें उसका खर्चा आएगा ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी एसेट्स जो है, क्योंकि उसमें आप अटर्नीज इन्वॉल्व होंगे, अप्रेजर्स इन्वॉल्व होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व होंगे, और ऑफकोर्स कोर्ट प्रोसेस. उसके बाद कोर्ट प्रोसेस जो है वो पब्लिक भी है, तो सारी पब्लिक को पता होगा कि क्या क्या ये छोड़ के जा रहे हैं और किस किस को मिल रहा है. तो क्वेश्चन ये कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों इतना इसमें खर्चा लगता है डेथ के बाद, या स्टेट प्लानिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है. बेसिकली स्टेट प्लानिंग जब आप करते हैं या फिर डेथ के बाद ये एसेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें बहुत सारे एरियाज ऑफ लॉ जो हैं वो इम्प्लीकेट होते हैं. यानी बेसिकली आप समझ लें कि सबसे पहले तो इनहेरिटेंस लॉ कि किसको क्या मिलेगा. सही बात है, डिफरेंट रिलीजन आल्सो हैव ए से ऑन इट, लाइक जो इस्लामिक लॉ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है, जो अमेरिकन लॉज की है, और भी दूसरे कल्चर्स की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. सो दैट्स वन थिंग राइट दैट गेट इम्प्लीकेटेड. दूसरे के जो बड़ा पेचीदा सवाल है वो ओनरशिप किसकी है. यानी लोग तो समझते हैं कि भाई ये तो मैं रह रहा था घर में, मेरी ओनरशिप है. जरूरी नहीं भाई, आपको देखना पड़ता है कि सेपरेट प्रॉपर्टी है, फिर कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, फिर उनको आपको जाहिर बात है सेपरेट अगर आपकी प्रॉपर्टी तो वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर आपकी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है तो दूसरे तरह से.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी प्रॉपर्टी.
कम्युनिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आप और आपकी जो स्पाउस हैं उन्होंने मैरिज के दौरान अक्वायर की, अपनी मेहनत से शादी के बाद अक्वायर की. उसमें तीन एक्सेप्शन है कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया या इनहेरिटेंस है, लेकिन आपने जो अपनी मेहनत से, जो कम्युनिटी इज ए पार्टनरशिप, जो मेहनत से आपने अपने ली है, जैसे अगर आपका अपना घर भी है जैसे सेपरेट है लेकिन उस पर रेंट मिल रहा है आपको और टैक्सेस आप अपने पैसे से पे हैं, वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी में आ गया। तो वो जैसे अब आपका घर है, आपने शादी की, ठीक है, वो तो है आप सेपरेट प्रॉपर्टी इसलिए कि आपने शादी से पहले वो घर आपका है, लेकिन आपने फिर रेंट लेना शुरू किया व्हाइल यू आर मैरिड, या फिर आपने टैक्सेस उस पर देना शुरू कर दिए, ये कर नाउ दैट इम्प्लीकेट्स कम्युनिटी प्रॉपर्टी, उसमें जो आपके स्पाउस है उसका उनका हिस्सा बनता रहा। जब आपकी डेथ होगी तो फिर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट्स नॉट ए सेपरेट प्रॉपर्टी दैट विल गो, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई कितनी इम्प्रूवमेंट्स की गई थी, टैक्सेस का क्या हिस्सा बना, इंश्योरेंस किसने दी थी, किस पैसे से दी थी, तो वो सब आपको अकाउंटिंग बारीकियों से करनी पड़ती है एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग एंड इट्स सो एक्सपेंसिव अगर आप पहले से इन चीजों का इंतजाम ना करें।
ऑलराइट, ठीक है। सो लिसनर्स, एस्टेट प्लानिंग की बात हो रही है, क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, इसके बारे में अगर कोई सवाल है आपके पास कि आगे जाके क्या होता है, कुछ भी आप पूछना चाहें आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550, दैट्स 510-770-1550, अदरवाइज आप कॉन्टेक्ट कीजिए AW लॉ ग्रुप से ऑन 510-936-8211 पर, 510-936-8211, उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com, ऑफिस यही न्यूवर्क में है तो 37600 सेंट्रल कोर्ट स्वीट 207 न्यूवर्क। अटॉर्नी क्लास हमारे पास कुछ 3 मिनट और हैं तो आप प्लीज हमें और इन्फॉर्मेशन बताइए उसके बारे में।
मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ।
जी जी,
देखिए दूसरा एरिया जो इसमें इम्प्लीकेट होता है टैक्स, आपको समझना होगा टैक्सेस किस तरह लगते हैं जो स्टेट प्रॉपर्टी, क्योंकि सही तरह नहीं किया तो 40% जो है गवर्नमेंट रख लेगी आपके,
40%
जी हाँ 40%। उसके बाद दूसरा के सिटीजनशिप, आपके स्पाउस सिटीजन थी कि नहीं थी सिटीजन या जो भी स्पाउस, वो दैट आल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस के सिटीजन, क्योंकि बहुत से लोग ग्रीन कार्ड पे रहते हैं, दैट विल एक्चुअली कॉम्प्लिकेट थिंग्स बिग टाइम। फिर क्रेडिटर्स राइट्स हैं और फिर बिजनेस एंटिटीज अगर आपके पास हो, तो ये सब लॉज को आपको समझना पड़ता है बिफोर यू कैन एक्चुअली पूरे स्टेट प्लान, और वरना आप नहीं करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं उनको तो करना ही पड़ेगा बेसिकली,
प्रोबेट
के थ्रू जो प्रोसेस में जाएगा एंड इट्स नॉट अ प्लेजेंट वन।
तो मुझे बताइए प्रोबेट को लोग इतना जो बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, दिक्कत है, अवॉइड करना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए, इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड है, सरकारी मैटर है
सरकारी, जो मैंने आपको बताया ना जो बारीकियां आपको करनी पड़ती हैं कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी कौन सी थी, सेपरेट प्रॉपर्टी कौन सी थी, इसका टैक्स के क्या इम्प्लीकेशन है, कौन सिटीजन था, कौन नहीं सिटीजन था, ये सब चीजें जो है ना गैदर, फिर आपको कोर्ट के पास जमा करानी पड़ती है, फिर कोर्ट डिसाइड करता है भाई किसको क्या मिलना चाहिए, फिर क्रेडिटर्स भी बीच में आ जाते हैं भाई ही ओज मी मनी एंड ऑल। जो सब कॉन्टिनेंट्स जो लोग आते हैं उनके पास तीन हमारे पास जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, एक तो वो बहुत से सिटीजन नहीं होते क्योंकि इंडिया से स्पेशली लोग क्रेडिट वो ग्रीन कार्ड पे रहते हैं तो वो सिटीजन नहीं बनना, तो उनके बहुत बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हम और दूसरा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई बाहर है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, तो हमारे पास FLCs हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉपर्टी जहां भी हो वहां का लॉ अप्लाई करता है, सो दैट मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाउ डू यू एक्सिक्यूट योर प्लान इन इंडिया या पाकिस्तान। और दूसरा है कि अब हमारे प्रॉब्लम आया कि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत से टाइम जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग अपने माइनर बच्चों को वो बेनिफिशियरी बना देते हैं, दैट रियली कॉम्प्लिकेट्स अलॉट, क्या होता
नहीं
है
करना
कि,
चाहिए।
नहीं क्या होता है कि वो फिर पैसा माइनर्स को नहीं जा सकता, वो सिर्फ उनके गार्डियन को जा सकता, गार्डियन कौन है, अब अगर आप मैं हस्बैंड हूं वाइफ है तो हम समझिए वाइफ मैं अगर मेरी डेथ हो गई तो वाइफ को मिल जाएगा कि बच्चों की माँ है वो, जी नहीं, आपको कोर्ट जाके आपको गार्डियन ऑफ स्टेट बनना पड़ता है जो कि $3,000-4,000।
जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए AW लॉ ग्रुप से, अटर्नी क्लास कैन हेल्प यू, 510-936-8211। अटर्नी क्लास, अटर्नी आसमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस, विल सी यू ऑन मे बी फ्राइडे।
थैंक यू
एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी ऑल ऑफ यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM। जी जाओ।